रेडियो मानव रचना 107.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और आप है मेरे साथ यानी दीक्षा के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं HIV और एड्स के बारे में। HIV और एड्स लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कुछ स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि HIV और एड्स के मामलों में काफी कमी आई है, लेकिन महिलाओं में आज भी ये बहुत ज्यादा है। और यही है आज का टॉपिक। और इस टॉपिक पर खास तौर पर से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नीता दबाई, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर ऋचा कथूरिया, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना में।
थैंक यू दीक्षा।
डॉक्टर नीता, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, हम HIV और एड्स की बात कर रहे हैं और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका मेडिकल साइंस में अभी तक कोई इलाज नहीं है। महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है HIV और एड्स। एड्स की बात अगर की जाए, HIV से एड्स तक की जो एक सफर होता है, या एड्स की खास तौर पर अगर बात की जाए, तो वो महिलाओं में ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है?
दीक्षा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और ये स्टैटिस्टिक्स हैव ऑलवेज प्रूवन दैट इन्फेक्शन जो होता है HIV का, जो एक वायरस होता है, रेट्रोवायरस जिसको कहते हैं, वो लेडीज में इन्फेक्शन जो होता है पर से, वो ज़्यादा पाया जाता है। क्योंकि जो जिस तरह से जब ट्रांसमिट होता है HIV का जो वायरस होता है, ये ऑफकोर्स लाइक वी ऑल नो और सब जानते हैं कि ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से सबसे ज़्यादा ईजिली ट्रांसफ़र होता है। क्योंकि जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है एक महिला में, तो उसकी जो यौन अंग हैं उसमें एक लाइनिंग होती है, म्यूकोजा जिसको हम कहते हैं, उसका सरफेस एरिया काफ़ी ज्यादा होता है। मतलब कि म्यूकोजा जो है काफी ज्यादा कंटेंट होता है म्यूकोजल लाइनिंग की, और इसलिए ही ये जो वायरस है उसको बहुत जगह मिलती है ट्रांसमिट होने की। और जो बदलता हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, जिसमें डिस्चार्ज हमेशा बदलता हुआ होता है, वो भी इस चीज को ट्रांसफर करने में कई बार हेल्प करता है। और पनपता भी एनवायरमेंट में बेटर है ये वायरस मेल्स के अगेंस्ट। और एक दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है जो मैं इससे भी ज़्यादा, ये तो एक बात हुई बायोलॉजिकली जो वल्नरेबल होती हैं लेडीज़, ये कारण है। पर एक दूसरा कारण और भी होता है जिसको हम सोशल इमोशनल कुछ भी बात करें, वो ये कि एक लेडी अपने हस्बैंड को या अपने पार्टनर को कभी फोर्स नहीं कर सकती है। मोस्टली हम देखते हैं कि कॉन्डोम वेयर करने के लिए, जो एक बहुत अच्छा तरीका होता है इसका ट्रांसमिशन बंद करने का, प्रिवेंट करने का। सो फीमेल्स आर ऑलवेज एट अ लॉस और दे डोंट नो हाउ टू से नो। और एक ये भी एक कारण है कि कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारी जो अनप्रिपेयर्ड सेक्सुअल एनकाउंटर्स होते हैं, और कई बार एक आदमी जो अपनी वाइफ को ट्रांसमिट कर देता है, जबकि वाइफ जानती है कि उसकी प्रोमिस्क्यूटी है, वो बाहर जाता है, फिर भी वो नहीं कर पाती है क्योंकि वो शायद सोशली उसकी एक स्टैंडिंग नहीं होती है। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस दीक्षा, आई वुड से दैट व्हाई फीमेल्स आर मोर वल्नरेबल, और क्यों हमें एक HIV का इन्फेक्शन ज़्यादातर लेडीज में हमें दिखा जाता है।
डॉक्टर नीता, यहाँ पर मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी, HIV से एड्स तक के बीच में काफी समय होता है अगर आप सही तरीके से केयर करें, तो क्या लेडीज में ऐसा भी होता है कि वो HIV से एड्स की तरफ बहुत जल्दी चली जाती हैं, क्योंकि वो बहुत फिजिकली कभी वीक होती हैं या इमोशनली इतनी ज्यादा स्टैंड नहीं कर पाती हैं?
या आई थिंक एक तो बिकॉज हमारी सोसाइटी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो एक अगर फीमेल के कंपैरिजन में अगर मेल को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका इलाज, उसका समाधान बहुत जल्दी ढूंढा जाता है। प्लस सारी फैमिली इज मोर इंटरेस्टेड इन टेकिंग केयर ऑफ द मेल पार्टनर, बट कॉन्ट्ररी टू दैट फीमेल पार्टनर्स के साथ क्या होता है कि जब एड्स की जो सिंड्रोम जब होता है, तो उसकी जब शुरुआत होती है, तो कई बार लेडीज जो हैं उसको उसका ध्यान नहीं देती हैं या दे इग्नोर करती हैं। और एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है, उसको जो मेडिकेशन जो चाहिए होती है, दैट इज़ एक्सपेंसिव। एंड हालांकि हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ऐसी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होती हैं जो HIV की प्रोग्रेस को, एड्स की प्रोग्रेस को काफ़ी हद तक रोक सकती हैं, वो उपलब्ध कराएं बहुत इकोनॉमिकल रेट्स पे, पर फिर भी बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जो इससे वंचित रह जाती है। सो दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू इकोनॉमिकली गेट दिस बेनिफिट। वन ऑफ द मेन रीजंस इज दैट, इसलिए उनमें जो प्रोग्रेशन होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। सो यू नीड टू, बिकॉज जहाँ हमें एचआईवी का इन्फेक्शन होता है तो एचआईवी एज वी ऑल नो कि इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, तो इम्यूनिटी जो होती है हमारी उसको हमें स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमारा खाना पीना रहना सहना सब बहुत अच्छा होना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, एक स्पेशल केयर होनी चाहिए, वो शायद हमारी फीमेल्स को स्पेशली इन इंडिया आई वुड से वो नहीं होती है। और अफ्रीका में भी जो देखा गया है जहाँ से ये डिजीज़ का ओरिजिन हुआ था या आप कह लो कि सबसे ज़्यादा जो एपिडेमिक सा फैला था और जिससे सारा वर्ल्ड को पता चला कि हाँ ये ऐसी बीमारी हो सकती है, वहाँ पे भी देखा गया है कि ज़्यादातर लेडीज़ में और स्पेशल प्रॉब्लम्स होती हैं जब वो लेडीज़ प्रेग्नेंट हो जाती हैं जिसमें और एक समस्या आ जाती है,
रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर ऋचा आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ हम बात करें हैं लेडीज की, उनमें एचआईवी है या एड्स की परेशानी आ जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले फैमिली उनको ब्लेम करती है, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से हैंडल करना चाहिए इन केसेस को, खासतौर पर से फैमिली को।
फैमिली को बहुत सपोर्टिव होना चाहिए क्योंकि इस केसेस में यूजुअली लोग बहुत इमोशनल डिसबैलेंस हो जाता है, शॉक में हो जाते हैं, डिनाइल में हो जाते हैं कि क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, या वो गॉड को ब्लेम करने लग जाते हैं या कुछ प्रोमिसेस करने लग जाते हैं कि शायद मैं किसी चीज़ को स्टॉप करूँगी तो ये मैं क्योर हो जाएगा। तो इस चीज़ में फैमिलीज़ का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेंगी तो जो उनकी लाइफ है वो जो डिसबैलेंस है वो और ज़्यादा डे बाय डे शैटर होता रहता है, जो उनकी अंदर की फीलिंग्स हैं बाहर निकलना है या लोगों से मिलना है, कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि शायद मिलने से भी मैं किसी को टच करूंगी तो ये प्रॉब्लम इंक्रीज हो सकती है, तो ऐसी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनका इमोशनल गिल्ट जो है, इनसाइड गिल्ट जो होता है वो उनको काफ़ी प्रॉब्लम करता है।
और खास करके आई थिंक रिचा, जब एक मदर, एक एचआईवी पॉजिटिव मदर एक बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे में भी वो एड्स ट्रांसमिट हो जाता है, एड्स का वायरस ट्रांसमिट हो जाता है, तो आई थिंक खास करके उस टाइम वो गिल्ट फैक्टर जो होता है वो आई थिंक बिकम्स 100-fold कि मेरी वजह से ये हुआ है।
हाँ। तो डॉक्टर ऋचा, ऐसे सिचुएशन में आप किस तरीके से काउंसलिंग करती है, खास तौर पर से पेशेंट की, क्योंकि अगर पेशेंट फीमेल है और प्रेग्नेंट है तो ये जैसा डॉक्टर नीता ने कहा कि और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है, गिल्ट फैक्टर बढ़ जाता है, तो तब आप कैसे काउंसलिंग करती हैं?
एक्चुअली काउंसलिंग तो मैं ज़्यादा फैमिलीज को ही बोलती हूँ कि आप, क्योंकि मैं तो एक घंटा या दो घंटा दिन में दे सकती हूँ, बट जितना सपोर्ट फैमिली दे सकती है, फ्रेंड्स रिलेटिव्स और जो भी उनके नियर्स एंड डियर्स हैं, उनको ही बोलती हूँ कि वो जितना ज़्यादा उनको सपोर्ट कर सकते हैं उतना अच्छा है। अदरवाइज वी हैव कॉम्बिनेशन थेरेपीज, उनमें उनको इंक्लूड करना चाहिए अपने आप को, लाइक दे कैन डू मेडिटेशन एंड दे कैन डू योगा, अपने आप को और एनर्जेटिक बनाने के लिए, कि जितने नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे दूर जितना रहेंगे उतनी अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल उनकी होती है। और बेसिकली तो हम लाइफस्टाइल पे ही फोकस करते हैं कि उनका लाइफस्टाइल अच्छा हो, खाना वो प्रॉपर अच्छा खाएं और अपने आप को एक रूम में लॉक नहीं करें, बाहर निकलें, लोगों से मिलें, इंटरेक्ट करें और नॉर्मल लाइफस्टाइल, नॉर्मल ज़िंदगी जितना जीना चाहते हैं उतनी जी अच्छे से।
लेकिन एक रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है, एक थोड़ा सा मन में डाउट रहता है कि आज हैं कल नहीं होंगे, बहुत जल्दी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है एचआईवी या एड्स के पेशेंट की, क्योंकि वो होता है, ये प्रॉब्लम ही ऐसी है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिकेशन नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कहती हैं उन्हें कि जिंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अक्सर लोग इसी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं।
ऐसे कोई प्रोमिसज हम लोग नहीं करते हैं, बिकॉज ये फियर बहुत ज़्यादा होता है, उन लोग को लगता है कि हम अपने बच्चों से बिछड़ जाएंगे, फैमिली से, जो जॉब्स कर रहे हैं दे फील दैट फियर ऑफ लूजिंग देयर जॉब्स एंड एवरीथिंग, तो पेन जो है उनको उस चीज़ का भी बहुत फियर होता है। तो हम लोग सिर्फ उनको सपोर्ट करते हैं और उनको बस लाइफस्टाइल पे अपना फोकस करने को कहते हैं और एज मच एज पॉजिटिव वो रहें उतना ही हम उनको फोकस करते हैं,
क्योंकि पॉजिटिविटी से आपकी इट इज़ ऑलवेज बिन नोन, पॉजिटिविटी मेडिटेशन इट इम्प्रूव्स योर इम्यून सिस्टम, और एक अपने इम्यून सिस्टम को मतलब बहुत सारे ट्रायल्स हुए हैं जहाँ पे ये दिखा गया है कि पॉजिटिव थेरेपी जो एक काउंसलर देता है उससे एक मरीज़ की जो इम्यूनिटी होती है और एक बॉडी की शक्ति होती है लड़ने की एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से वो बढ़ जाती है, बिकॉज एक सेल्फ बिलीफ हो जाता है कि आई कैन हैंडल दिस, सो व्हेन दैट मेंटल सिचुएशन इज़ ट्रांसफर्ड टू द फिज़िकल सेल्फ वो हमेशा बहुत लाभदायक होता है। तो अपने पेशेंट का काउंसलिंग कराना बहुत ज़रूरी है, जिसमें वो अपने फियर्स के बारे में बात करता है या करती है कि मुझे क्या क्या फियर्स हैं। शायद एक बात करने से ही आपकी आधी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं, जब आप अपने काउंसलर से बात करते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं ये सोचती हूँ। तो व्हेन यू वॉइस योर फीलिंग्स यू आर लेटिंग गो ऑफ दोज फियर्स एक्चुअली,
तो उसके सॉल्यूशंस आपको मिलते चले जाते हैं।
हाँ जी हाँ जी, बट जैसे ऋचा ने कहा कि कोई श्योर फायर सॉल्यूशन है नहीं, एंड फॉल्स प्रॉमिसेस यू कांट डू एज अ डॉक्टर। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जी आप क्यों चिंता करते हो और आपका तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। वी कांट डू दिस, वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड, वी हैव टू बी रियल। रियलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा है कि पेशेंट को अपनी रियलिटी से लड़ना बहुत ज़रूरी है, बीइंग पॉजिटिव।
बिल्कुल। तो डॉक्टर नीता, हम बात कर रहे हैं HIV और एड्स की, और यंगर जनरेशन में ज़्यादा देखा जाता है, और यंगस्टर्स जो होते हैं उनमें अक्सर पाया जाता है कि मल्टीपल पार्टनर्स हैं या कोई और समस्या हो गई है, तो उस वजह से HIV और एड्स उन तक पहुंच जाता है। और आप एडोलेसेंस के लिए काम करती रही हैं, तो आपसे जानना चाहूँगी क्या गाइडेंस देती हैं आप अक्सर यंगस्टर्स को?
सी, यंगस्टर्स को ना एक तो ऐसा नहीं है कि दीक्षा दे डोंट नो अबाउट HIV। आई थिंक हम लोग एक फिफ्थ क्लास की लड़कियों से भी या लड़कों से बात करते हैं, दे हैव ऑल हर्ड अबाउट द HIV वायरस। एंड ये क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट दैट द अवेयरनेस अबाउट एड्स हैज़ रीच्ड एवरीवेयर, एंड दे ऑल्सो नो दैट HIV का प्रोग्रेशन होता है तो वो एड्स हो जाता है, और HIV इज़ अ वायरस, सब कुछ जानते हैं इसके बारे में। बट कई बार क्या होता है कि वो स्पेशली द यंगर जनरेशन, दे फील कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता, ये होता है तो पता नहीं किसी और में ही होता होगा। एंड आमतौर पे दे ओनली थिंक अबाउट दैट केवल प्रोमिस्क्यूटी ही एक तरीका है या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ही एक तरीका है जिससे होता है। तो उनको ये बताना कि जो और मेथड्स हैं जिसकी वजह से एड्स हो सकता है, लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन या अनस्टेराइल इंजेक्शंस या मल्टीपल इंजेक्शंस, ड्रग्स जो इनमें बहुत पाया जाता है, जो IV इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स होते हैं उनमें भी ये हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें उनको हम अवगत कराते हैं कि दीज आर द रीजंस। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो रीज़न यंगस्टर्स में होता है, वो होता है ऑफकोर्स अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, क्योंकि और उसके लिए हमें इनको बहुत सजग करना पड़ता है, हमें इनको एडवाइस करना पड़ता है, स्पेशली गर्ल्स को, बिकॉज गर्ल्स वुमेन एज इट इज़ आर बायोलॉजिकली वल्नरेबल। और एक लड़की में उसकी जो इम्यूनिटी होती है, उसकी जो यौन अंगों की इम्यूनिटी होती है, वो और भी कम होती है, तो हर तरह का वायरस इफेक्ट कर सकता है उसको, तो उसको खास करके बताना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा, टू ask them to learn to say no to unprotected contact, या to learn to ask their partners to use condoms। ये इसकी हम advice बहुत frankly और बहुत clearly उनको बताते हैं कि यही ये एकमात्र तरीका है जिससे आप HIV से बच सकते हो। और क्योंकि उनकी relationship जो होती है उस adolescent age में वो committed नहीं होती है, सो इसलिए दे आर एट अ ग्रेटर रिस्क। एंड इसलिए वी हैव सीन दैट ओवर द ईयर्स, पहले 50% ऑफ न्यू केसेस जो होते थे वो इसी जनरेशन, इसी एज ग्रुप में होते थे, अब फ्रॉम दैट 50% ऑफकोर्स इट हैज़ कम डाउन टू 35%, बट स्टिल दिस एज ग्रुप कंप्राइजेज द मैक्सिमम न्यू केसेस। सो उनको ये सारी बातें बहुत फ्रेंकली बतानी पड़ती हैं विदाउट हेजिटेशन, दैट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, रीजन्स वाई, बिकॉज दे आर ऑल अवेयर दैट ये होता है, पर उनको हमेशा ये लगता है कि किसी और में होता होगा, आई विल नॉट बी वल्नरेबल टू इट, बिकॉज माई पार्टनर मे बी अ वेरी नाइस पर्सन कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, बट क्योंकि इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं होती है, तो वी ऑलवेज टेल देम दैट हाउएवर नाइस, कितना ही अच्छा आपका पार्टनर हो, आपको क्या पता कि उसके और कितने पार्टनर्स हैं। सो ये बात हमें उनको बहुत बताना, हमें हम इस तरह से उनको काउंसिल करते हैं अबाउट देयर प्रोटेक्शन।
डॉक्टर अच्छा, जैसे डॉक्टर नीता ने कहा है, मेजरली लोग यही सोचते हैं कि हमें नहीं हो सकता, ये कहां से हो गया, हमें कैसे हो गया, तो आप उस सिचुएशन को कैसे टैकल करती हैं, क्योंकि एक शॉकिंग न्यूज होती है किसी के लिए भी।
जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले तो काफ़ी लोनली फील करता है, सो कंफर्टेबल करके उससे बात करनी होती है, बिकॉज़ दे फील लाइक लाइफ इज़ होपलेस, एंड काफ़ी एंग्री भी होते हैं पेशेंट्स जिनके साथ मैं डील करती हूँ। तो उन चीज़ों को हम बहुत आराम से और प्यार से उनको समझाते हैं कि प्रॉपर आप डायग्नोस कराइए, कि जो भी आपको प्रॉब्लम है वो डायग्नोसिस क्लियर है, और उसके बाद उनको डिफरेंट लाइफस्टाइल्स के टिप्स देते हैं और उनके साथ थेरेपीज करते हैं, जिससे वो अपने आप को डे टू डे लाइफ में और एनर्जेटिक और पॉजिटिव समझते हैं। हम उनको यही बताते हैं कि इट्स नॉट द एंड, इट्स मे बी मीनिंग ऑफ योर न्यू लाइफ, सो यू कैन थिंक पॉजिटिव टूवर्ड्स दैट एंड मे बी इट हैज़ अ पर्पज़ दैट यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव और समथिंग लाइक दैट। मतलब जो भी हम उनको इस तरह से काफ़ी पॉजिटिव समझाते हैं कि जितना लाइफस्टाइल वो अपना इंक्रीज करेंगे, लोगों से मिलेंगे, अपने आप को किसी रूम में बंद नहीं करें, ये सब चीज़ें हम उनके साथ।
और मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी तो इनको ये भी बताना है कि देखिए आपके माथे पे नहीं लिखा हुआ कि आपको HIV है,
तो
है ना, एंड इट इज़ नॉट दैट एवरीबडी नोज, इट इज़ अ कॉन्फिडेंशियल थिंग, और ना ही आपको अपने बारे में ये सब किसी को बताना है। तो पॉजिटिव थिंकिंग में एक ये रेनफोर्समेंट होना चाहिए कि आपकी शक्ल पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप HIV पॉजिटिव हैं, और HIV पॉजिटिविटी और एड्स की दूरी बहुत लंबी होती है, उसके बीच में कई और भी नई थेरेपीज आई हुई हैं। सो आई थिंक ऑन द होल इट हैज़ टू बी अ वेरी एक कंप्लीट ट्रीटमेंट होना चाहिए, कि जहाँ पे एक थेरेपी होती है उनको पॉजिटिव थिंकिंग की, जैसे रिचा ने कहा पॉजिटिव थेरेपी करते हैं, एक्सरसाइजेस बताते हैं उनको कि हाउ टू थिंक पॉजिटिव, एंड उसके साथ साथ उनकी मेडिकल जो थेरेपी है वो भी साथ साथ चलती रहनी चाहिए, सो दैट दे फील। एंड ये चीज़ सबसे बड़ी बात तो ये है कि एज अ केयर गिवर आपको ये बात बहुत कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है, और फैमिली जो होती है उसमें भी हमें उनको यही बताना होता है कि सबसे बड़ी बात तो फैमिली को भी कि वो ये बात कॉन्फिडेंशियल रखे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फैमिली भी इधर उधर बात करे कि जी हम क्या करें कि हमारे यहाँ ऐसे HIV पॉजिटिव कोई है। सो कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कीपिंग इट लिमिटेड टू ओनली दोज पीपल हु आर कंसर्नड with the person who is HIV positive is a very important part of the therapy. तभी वो patient जो है अपने आप को positive feel करेगा, and उसका treatment कोई घर में उसके साथ जो behavior है वो कोई अलग नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल। डॉक्टर नीता, आप बात करते हैं pregnant women की, सबसे बड़ा शॉक HIV या AIDS होना, उसके बाद प्रेगनेंसी होना, और उसके बाद सबसे बड़ा डर ये कि कहीं जो बच्चा होने वाला है वो HIV पॉजिटिव ना हो। तो ऐसी सिचुएशन को आप टैकल कैसे करती हैं, और क्या हॉस्पिटल्स में सही ट्रीटमेंट मिलता है कि इस तरीके की डिलीवरीज को सही तरीके से किया जाए?
सी द फर्स्ट थिंग इज दीक्षा दैट हर प्रेगनेंट वुमन को हम जैसे ही उसकी प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस होता है तो अराउंड 12 वीक्स हम उसका ये सारे टेस्ट कराते हैं, और जो एंटीनेटल टेस्टिंग है उसमें HIV का जो टेस्ट है वो मैंडेटरी होता है कि हम करें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी व्हेन वी डू दिस टेस्ट आल्सो यू आर सपोज टू एक्सप्लेन, एक कंसेंट भी लेना होता है। कोई भी HIV का टेस्ट जब होता है तो जब आप अपने आप को सब्जेक्ट करते हो HIV टेस्टिंग के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि ये HIV टेस्टिंग जो हो रही है वो मेरी उसके रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, अगर पॉजिटिव हुआ तो ये क्या उसका क्या मतलब है। तो ये चीज़ समझानी बहुत ज़रूरी होती है प्रेग्नेंट वुमन को। वंस शी इज़ HIV पॉजिटिव देन वी ऑल्सो डू अ कन्फर्मेटरी टेस्ट जिसको वेस्टर्न ब्लॉट मेथड कहते हैं। सो वो एक कन्फर्मेटरी टेस्ट भी होता है जिससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ जी ये HIV वायरस ही है, क्योंकि कई बार फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है। सो वी हैव टू बी वी है एज अ केयर गिवर आई हैव टू बी 100% कंफर्म दैट येस दिस इज़ अ पेशेंट हु इज़ HIV पॉजिटिव। जब HIV पॉजिटिविटी आती है तब हम उनके जो इम्यून सिस्टम है उसके भी टेस्ट करते हैं कि इसकी इम्यूनिटी कितनी लो हो गई है, और उसके हिसाब से हम उनको एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन शुरू कर सकते हैं। तो जो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होता है MTCT जिसको कहते हैं वो रिड्यूस कर देता है टू अ लार्ज एक्सटेंट, एंड सो मच सो कि अगर आप सही टाइम पे उसका उस लेडी का ये ट्रीटमेंट शुरू करें तो समटाइम्स द ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस टू द बेबी इज़ बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, और ये जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं ये सब जगह मिल जाती हैं। डेफिनेटली दे आर लिटिल एक्सपेंसिव इन द प्राइवेट सेक्टर, बट इट दे वेरी इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव हैं, और काफ़ी हद तक रिस्क जो होता है ट्रांसमिशन का वो कट ऑफ हो जाता है। जो लास्ट क्वेश्चन अबाउट डिलीवरी, वो एक अभी भी मुझे लगता है एक इशू है. हालांकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो गवर्नमेंट के बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं कि यू कैन नॉट रिफ्यूज़ एनी पेशेंट ऑफ एचआईवी, और मोस्ट ऑफ़ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड इन जनरल प्रोटोकॉल्स होते हैं कि एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट या कोई भी संक्रामक जो रोग है उसके पेशेंट का की डिलीवरी जो है वो एक स्पेशल लेबर रूम में होती है जिसको सेप्टिक लेबर रूम कहते हैं, और वही प्रोटोकॉल हेपेटाइटिस पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए भी होती है और ये एचआईवी के लिए भी होती है. तो देर आर वेरी ब्रॉड गुड गाइडलाइंस जो हैं जो फॉलो करने होते हैं. और आपका जो स्टाफ है उसको सबसे ज़रूरी तो ये है कि हॉस्पिटल का स्टाफ हैज टू नो हाउ टू हैंडल अपनी प्रोटेक्शन के लिए, बट द स्टाफ ऑल्सो हैज़ अ राइट टू रिफ्यूज़ कि हम नहीं आएंगे इसके केस में. वो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, पर प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के हिसाब से अगर चलें तो ये सब कुछ मुमकिन है. बट डेफिनेटली हर हॉस्पिटल का एक खुद का भी प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि दिस रिक्वायर्स अ सर्टन अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एंड अ सर्टन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू हैव अ प्लेस जो एक सेपरेट रूम होना चाहिए, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, जो आपके ड्रेप्स यूज़ होते हैं, सब डिस्पोजेबल होने चाहिए. तो कई बार वो जो पूरा बर्डन है वो शायद उस एचआईवी पेशेंट को बेयर करना पड़ता है. सो देर आर बहुत सारे, हर हॉस्पिटल के अपनी गाइडलाइंस प्रोटोकॉल्स होते हैं, बट नो हॉस्पिटल विल रिफ्यूज़ इन एमरजेंसी एनी पेशेंट ऑफ एचआईवी, ये यूनिवर्सल है. सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. पर हाँ, डिलीवरी में भी डॉक्टर्स को सबको एक तो प्रोटोकॉल पता होना चाहिए कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और एक कंटिनजेंसी होती है कि अगर ऐसे पेशेंट को से किसी को भी पिन प्रिक से या कट से ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट हो गया तो उसके बाद हमें क्या क्या करना है. इम्यूनोग्लोबुलिंस देने, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देनी है, वॉश करना है, तो वो भी बहुत अच्छे WHO के गाइडलाइंस हैं विच हैव टू बी फॉलोड वेरी वेरी स्ट्रिक्टली. सो अगर हम ये सब गाइडलाइंस फॉलो करें तो हमने देखा है कि इवन पिन प्रिक या नीडल प्रिक या किसी से भी अगर ऐसी इंसिडेंट होता है तो जो ट्रांसमिशन होता है वो ऑलमोस्ट निल होता है अगर हम ये सब फॉलो करें. तो ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये हर हॉस्पिटल को अपने गाइडलाइंस प्रोटोकॉल्स और पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम में ये इनकॉर्पोरेट करना होता है.
जी, आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है कि ऐसा कोई पेशेंट आया हो और जिसकी पूरी केयर नहीं की गई हो या उसे कोई परेशानी आई हो हॉस्पिटल?
दीक्षा, ऑल व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट यस, वी हैव हैड पेशेंट्स लाइक दिस, और फॉर्चुनेटली वी आर इन अ सिटी वेयर दिल्ली इज़ वेरी क्लोज एंड द कैपिटल इज़ वेरी क्लोज टू आवर प्लेस. सो कपल ऑफ टाइम्स हमें जो बहुत अफोर्ड नहीं कर पाते थे तो हमें उनको भेजना पड़ा टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, टू एम्स, सफदरजंग एंड ऑल, वेयर ऑल दीज हॉस्पिटल्स आर बहुत अच्छे से इक्विप्ड हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं. तो मैंने तो अपनी पेशेंट्स को उनको वहाँ भेजा है एंड बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स मिला है, तो कोई हमें ऐसी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई. पर आप टाइमली अगर उनको भेज दो तो उस हॉस्पिटल को भी पता होता है कि ऐसा पेशेंट आ रहा है. तो हम उनको यही एडवाइस करते हैं हर पेशेंट को कि आप अपने टाइम पे ऐसी जगह पे पहुंच जाइए जहां पे आपको फटाफट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा.
जी,
और अदरवाइज एड्स का कोई पेशेंट हो या HIV पॉजिटिव कोई पेशेंट हो तो कोई भी हॉस्पिटल उसे इमरजेंसी या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं कर सकता.
डॉक्टर नीता, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि एक लेडी को अपनी केयर कैसी करनी चाहिए, सपोर्ट कैसा होना चाहिए फैमिली की तरफ से, और साथ ही डॉक्टर रिचा आपने भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि कैसे काउंसलिंग आप करती हैं और कैसे फैमिली का सपोर्ट एक पेशेंट के लिए, HIV और एड्स के पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए.
थैंक यू दीक्षा, एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट रेडियो मानव रचना फॉर दिस प्रोग्राम, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है, और बिसाइड्स अवेयरनेस टैकलिंग द प्रॉब्लम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
जी, HIV और एड्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर करी है. फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. फील गुड, फील लाइफ.